नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नव प्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार संसद के बजट सत्र में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम 2026 लाएगी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी। भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति ने शुरुआती बढ़त बनाई। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। अमरीका ने प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न करने पर ईरान को हर संभव कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान ने इसे खारिज करते हुए आक्रामक बताया। और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नव प्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मैं राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत को विकसित होते देख रहा हूं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को।
स्टार्टअप के लिए प्रोक्योरमेंट के नए रास्ते खोले। स्पेस सेक्टर जो पहले पूरी तरह प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बंद था, उसे भी अब ओपन कर दिया गया है। आज लगभग 200 स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्हें ग्लोबल मान्यता भी मिल रही है। इसी तरह ड्रोन सेक्टर को देखिए, सालों तक इनेबलिंग फ्रेमवर्क के अभाव के कारण भारत काफी पीछे छूट गया। हमने आउटडेटेड रूल्स हटाए, इनोवेटर्स पर भरोसा किया। साथियों, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमने जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाया है। आज करीब 35,000 स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस जेम पर ऑनबोर्डेड हैं। इन्हें करीब 50,000 करोड़ के लगभग 5,00,000 ऑर्डर्स मिले हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी क्षेत्र का अवलोकन किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक में स्टार्टअप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 2016 में केवल 400 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 2,00,000 से अधिक हो गई है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक पूर्व 16 जनवरी 2016 में की थी। इसका शुभारंभ नवाचार, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और निवेश संचालित वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में हुआ था। इसका उद्देश्य भारत को नौकरियां ढूंढने वालों की बजाय नौकरियां सृजित करने वाले देश के रूप में स्थापित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज वैश्विक मानचित्र पर एक उज्ज्वल स्थान रखता है। स्टार्टअप इंडिया पहल के इन 10 वर्षों में युवाओं ने सशक्त इंक्यूबेटरों, क्रांतिकारी सुधारों और अनुकूल वातावरण के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया है। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।
इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए कल हुए मतदान की मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के अनुसार भाजपा 21 सीटों पर जबकि शिवसेना 15 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 6 सीटों पर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 12 सीटों पर आगे है। मतगणना अभी जारी है और अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 19 जनवरी को दाखिल किए जाएंगे और उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव 20 जनवरी को होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मकर संक्रांति किसानों का त्यौहार है और एक तरह से ये लोग ही इस दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तरायण इसी परंपरा का एक हिस्सा है।
मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहाँ से किसान अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाहा। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है।
सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में श्री शाह ने कहा कि जिन लोगों ने इसे तोड़ा था उनका नामो निशान विश्व के मानचित्र में कहीं नहीं है, लेकिन सोमनाथ मंदिर उसी जगह पर पूरी शान से खड़ा है।
विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। इसको तोड़ने वाले कहीं पर आज दुनिया के नक्शे पर नहीं दिखाई पड़ते हैं और सोमनाथ का मंदिर पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ वही जगह पर खड़ा है। ये प्रतीक सनातन धर्म की अजरता का, अमरता का और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अमर है, इसका ये प्रतीक बना है।
श्री शाह ने सभी देशवासियों विशेषकर किसानों को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के अवसर पर शुभकामनाएं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 2 नई पुस्तकों का विमोचन किया। जनरल वी बानो और महात्मा शीर्षक वाली ये पुस्तकें भारत के पहले नमो पुस्तक महोत्सव में विमोचित हुई। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये लेखकों, विचारकों और युवाओं को विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया। यशवंत वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित की गई समिति को चुनौती दी थी। इस समिति को पिछले साल मार्च में उनके आवास पर जले हुए नोट मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित किया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस ए शर्मा की पीठ ने कहा कि समिति का गठन कर लोकसभा अध्यक्ष ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और न्यायमूर्ति वर्मा किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने डाक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में किए गए निर्यात पर शुल्क वापसी, राज्य और केंद्रीय करों तथा शुल्कों की छूट योजनाओं के तहत निर्यात संबंधी लाभों का विस्तार किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य डाक चैनल का उपयोग करने वाले निर्यातकों के लिए समान अवसर प्रदान करना तथा सीमा पार ई कॉमर्स के विकास के लिए एक अनुकूल और समावेशी वातावरण बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय महत्वपूर्ण आधार वर्ष संशोधन कार्यक्रम के लिए तैयार हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति को जानने के लिए आधार वर्ष की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रमुख संरचनात्मक बदलाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी और व्यापक रूप से डिजिटलीकरण ऐसे कुछ कारक हैं जिसकी वजह से देश में आधार वर्ष का अद्यतन जरूरी हो गया है। आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित होकर अब 2022-23 होगा।
जिस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था थी 2011-12 में, वो नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो पहले नहीं थे, एनर्जी के सोर्सेज हैं वो चेंज हो गए हैं, और अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं। जो ढांचा था अर्थव्यवस्था का, वो ढांचा अब बदल गया है, और उस नए ढांचे को विस्तार से दर्शाया जाने के लिए हमें आधार वर्ष की परिवर्तन करना पड़ता है।
ये साक्षात्कार आकाशवाणी FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी प्रसारित होगा। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के काकोरा गांव में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान एक IED को निष्क्रिय कर दिया। अभियान के दौरान इलाके से एक बैग में लगभग 3.5 किलोग्राम वजन का एक IED बरामद किया गया था। ये इस क्षेत्र में किसी भी खतरे को बेअसर करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सुरक्षा उपायों का हिस्सा था। सुरक्षा बल उच्च सतर्कता अभियान जारी रखते हुए क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने आज सूचित किया कि पिछले वर्ष 3 से 5 दिसंबर के बीच इंडिगो की सभी रद्द उड़ानों के रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें जारी कर दिया गया है। इससे पहले इंडिगो ने इस महीने की 3, 4 और 5 तारीख को एयरलाइन के परिचालन में व्यवधान से प्रभावित ग्राहकों को ₹10,000 के मुआवजे की घोषणा की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसक कार्रवाई को रोकने के लिए हर संभव उपाय पर विचार कर रहा है। कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वाल्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। ईरान के उपस्थायी प्रतिनिधि गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा कि अमेरिका द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का निर्णायक, उचित और कानूनी जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के दबाव के बाद ईरान ने संकेत दिया है कि वह प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कार्रवाई रोक रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के न्यूयॉर्क में कल एक आपातकालीन बैठक हुई। इसमें ईरान में तेजी से बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं।
तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। कई अरब देशों ने हाल के दिनों में अमरीका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए प्रयास किए हैं। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कुछ क्षेत्रों में शांति फिर सामान्य होने का संकेत दिया है, लेकिन सरकार द्वारा लगाया गया संचार प्रतिबंध अब भी लागू है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कार्रवाई शुरू होने के बाद से लगभग 2,400 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बीच अमरीकी रक्षा विभाग ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनजर वह दक्षिण चीन सागर से विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह को पश्चिम एशिया की ओर तैनात कर रहा है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा नव प्रवर्तकों को समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार संसद के बजट सत्र में खराब गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए बीज अधिनियम 2026 लाएगी। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों की मतगणना जारी। भाजपा शिवसेना गठबंधन महायुति ने शुरुआती बढ़त बनाई। भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। अमरीका ने प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न करने पर ईरान को हर संभव कार्रवाई की चेतावनी दी। ईरान ने इसे खारिज करते हुए आक्रामक बताया। और नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।